ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. हमने तो लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान कर दी, ये किस लिए, किस लिए? लअल्लहुम यतदक्करून, कि शायद कि उनको नसीहत हो ही जाए कोई, शायद इनको कुछ समझ आ ही जाए, शायद ही अपनी गफलत छोड़ ही दे, शायद इनको होश आ ही जाए। कि अल्लाह ताला सुभान अल्लाह कितनी प्यारे तरीके से हमें समझाता है, अल्लाह ताला ने तो हर तरह से समझा दिया। देखिए कितनी मिसालें हैं। और देखिए पहले आई ना, ये भी कुरान में मिसालें होना भी कुरान की खसूसियात में से, जो हमने पहले पांच खसूसियात पढ़ी है आयत नंबर 23 में, अब ये और एक खसूसियत हमें यहाँ पे पता चली कि कुरान वो है जिसमें अल्लाह ताला ने बार बार मिसालें दी है। मिसालों से, मिसालों का मकसद क्या है? इंसान को समझ आ जाए बात, ये सुन ले, इसको पता चल जाए। अब इंसान को लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। अब पहले बताया गया कि मसानी दोहराई जाने वाली आयात बयान की है ना, बार बार दोहराई जाती है, मिलती जुलती भी बयान की। अब बताया गया कि मिसालों से भी बयान किया गया। अब हम भी तो जब किसी को समझाना होता है मिसाल से समझाते हैं ना, ताकि बात सही समझ आ जाए। हम मिसाल देते हैं बच्चों को, देखो भी ये ऐसे हुआ, उसके साथ फलां के साथ ऐसा हुआ, देखो तुम ना ऐसे करना, मिसालें देते हैं ना। ये लोगों को कितनी मिसालें दी गई हैं कुरान में, लिन्नास, लोगों के लिए, सबके लिए ये मिसालें। अब इंसान क्या आखरत में कभी कह सकेगा अल्लाह मुझे तो समझ ही नहीं आई थी, या अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था? अल्लाह मुझे भी पता होता, तूने बताया होता तो मुझे, मैं भी कुछ सही अपने आप को कर लेता। नहीं, तुम कुछ भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते, हुज्जत तमाम हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर तरह की मिसालें दे के भी तुम्हें समझा दिया कि नहीं भी समझ आती थी, अब मिसालों से चलो समझ आ जाए। लेकिन अगर किसी ने टस से मस नहीं होना और उसका दिल बंद हो चुका है ना, वही बात, कासिया तो कुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए। अगर दिल ही सख्त हो गए, अगर सीना ही घुटा हुआ है, तो चाहे जितनी भी मिसालें देते रहो, ऐसे ही है जैसे बच्चे चट्टानों के साथ टकरा टकरा के पानी और फिर बह जाएगा, लेकिन कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। तो अगर ये हमारा भी हाल यही है कि मिसालें भी नहीं असर करती, कई कई कौमों की मिसालें दी अल्लाह ताला ने, कई लोगों की, जैसे बाग वालों का किस्सा बता के अल्लाह ताला ने हमें समझाया, कई लोगों के किस्से बताए गए, हम पढ़ते भी हैं, मन नसीहत कितनी लेते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे नहीं ये फरमाया कि ताकि वो सवाब हासिल कर ले, मिसालों को पढ़ पढ़ के सवाब मिलता जाए, नहीं, नसीहत, नसीहत किधर रह गई? अगर नसीहत ही नहीं ली तो फिर इसका फायदा क्या कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, नसीहत कहाँ है? और नसीहत यही है ना कि इंसान अपनी रविश को बदल ले, इन चीजों से सीख ले, समझ ले। कुरान अरबी, यानी ये कुरान अरबी है, आगे फिर इसकी और खसूसियात, ये अरबी जुबान में, क्योंकि सिर्फ पहले जो मुखातिब थे वो तो अरबी थे, उनको ये बात समझ आ रही थी, उनकी जुबान में उतरा कि वो ये ना कह सके हमें तो समझ ही नहीं आई, उन्होंने आगे लेके दुनिया को पहुंचाना था। गैर जी अवज, लेकिन अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी जुबान अरबी नहीं है तो वो अब वो कह दे मुझे तो समझ ही नहीं आती। एक तो सब जुबानों में तर्जुमा हो चुका, दूसरे ये कि जब हमने हर जुबान सीख ली तो एक कुरान की अरबी सीखना ही हमारे लिए मुश्किल। हमने अंग्रेजी सीख ली, हमने और जुबानें सीखी, ये नहीं सीख सके। गैर जी अवज, इसमें कोई टेढ़पन नहीं। अफला या तदब्बरुल कुरान में आता है ना कि तुम कुरान में गौर फिक्र नहीं करते, अगर ये किसी और की तरफ से होता तो इसके अंदर तुम देखते बहुत सारी इख्तलाफ होते, तो इसमें कोई टेढ़पन नहीं, कोई कजी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि पैगाम ही सही ना हो, पता ही ना हो, कंफ्यूजन हो, कुछ उलझने वाली बातें ऐसी हो कि भाई इंसान समझ ही नहीं पा रहा, वो और ही ज्यादा उसका जहन उलझ गया है, ऐसी कोई भी बात नहीं। सीधी साफ बातें हैं जो हर एक को समझ आ सकती, इवन आप सिंपल तर्जुमा भी पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी बातें आपको उसमें भी समझ आ जाती हैं। लअल्लहुम यत्तकून, अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरे कुर्बान जाए कि लअल्लहुम यत्तकून, कि शायद कि वो बच जाए, अल्लाह ताला की कितनी चाहत है कि लोग बच जाएं।
अल्लाह ताला की कितनी चाहत है कि लोग आग के अजाब से महफूज हो जाएं। पता नहीं लोगों की इतनी चाहत भी है कि नहीं है जितनी अल्लाह ताला को चाहत है। इतनी अल्लाह ताला इंसानों की भलाई और उनको बचाने की फिक्र कर, फिर भी अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला ही नहीं चाहता कि हमें जन्नत में दाखिल करे, या अल्लाह ताला ही नहीं चाहता कि हमें भलाई मिले या हमें हिदायत मिले या हम बच जाए आग से, तो ये झूठ है। कुरान कहता है अल्लाह ताला चाहता है कि आप बच जाएं, इसीलिए उसने ऐसा कलाम नाजिल किया। इसका मतलब ये कलाम है जो हमें बचा सकता है, ये कलाम है जिससे नसीहत पकड़ के हम सीधा राह पा सकते हैं, ये कलाम ही है जो हमें सीधा रख सकता है। अजामों से बचने के नुस्खे इसके अंदर हैं, जन्नत में जाने का तरीका इसके अंदर है, वो रास्ता इसमें बताया गया है। समझ आ रही है ना आपको? ये क्या नुस्खा आपको पता चलता है क्या हम बच जाए? क्या बताया गया, क्या नुस्खा बताया गया कि हम नसीहत पकड़ लें? ये कुरान, फिर भी हम इससे भागते हैं, फिर भी हम इसकी कदर नहीं जानते। दरब अल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरका, अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करता है तौहीद और शिर्क की। अल्लाह ताला ने बयान मिसाल की पहले, मिसाल बयान की पहले शिर्क की, कि एक शख्स की मिसाल की बयान की। फी शुरका मुतशया की सूना, उसमें उसमें कई शरीक हैं, यानी उसके कई मालिक हैं। एक गुलाम है और उसके मालिक बहुत सारे। मुतशया की सून, अच्छा हैं भी वो ऐसे मालिक के सारे ही झगड़ा झगड़ने वाले। आप इसको थोड़ा सा, इससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आप देखते हैं हमारे बैक होम, हमारे वहाँ पे मेड्स होती थी, तो एक मेड कोई ऐसी होती है जो चार घर उसने लिए होते, चार घरों में उसने काम करना है। अब हर घर में उसको देर हो गई, दूसरी तरफ आती तो वो बाजी डांटती है, तुम देर से क्यों आई? अजी उनके घर देर हो गई थी। तो उनके घर देर होते, हमारे घर का तो तुम काम ऐसे नहीं करती, उनका ऐसे करती, उनके घर इतनी देर लगाती हो, तुमने इनके घर इतने घंटे लगा दी। फिर तीसरे घर में जाती वहां से भी डांट पड़ती है। फिर हर कोई कहता है जी उसी से जाके लोग ना हमारे पास, के तुम उनके घर भी तो काम करती हो। इससे मैं आपको एक मतलब लाइव वर्ल्ड में एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको उससे अंदाजा होगा कि हर बाजी अपनी जान छुड़ाती है। अच्छा दूसरी है, वो सारा 24 घंटे आपके घर ही रहती है, वो आपके घर ही काम करती है, वो किसी और के घर नहीं करती। अब क्या आपको पता है जी मैंने ही इसको देना है जो भी सदका वगैरह जो भी करना है? इसी तरह उसके साथ कोई शिकायत भी नहीं है, वो जाहिर है आपके घर ही आती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला मिसाल देता है एक गुलाम की जिसके बहुत सारे आका है, वो सारे झगड़ते भी हैं। अब वो झगड़ते, वो यानी वो आका जो है ना, वो आपस में भी झगड़ालू हैं, ये जिद करते हैं या एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब ये जिसके पास जाता है दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे के पास जाएगा तो वो डांटेगा कि तुम उसके पास क्यों ऐसे करते हो, तुम उसको क्यों टाइम देते हो, या जो भी उसको कहेगा। अच्छा वह रजुलन सलामन ले रजुलन, सालिम है वो एक आदमी के लिए, एक एक गुलाम ऐसा है जो सालिम है, यानी वो सलामत है, यानी वो एक ही बंदे के लिए, बस एक का ही गुलाम है। हल यस्तवी यानी मसला, क्या दोनों की मिसाल बराबर हो सकती? नहीं हो सकती ना। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ आ रही, बल अक्सर हम ला यालम, बल्कि अक्सर इनमें से इल्म ही नहीं रखते। अच्छा ये तो एक वैसे मिसाल है आपको, एक ये तो शिर्के जली की मिसाल है ना, कि एक बंदा है जो कितने उसने खुदा बनाए में, या कोई ये देवी कोई ये देवी कोई ये, किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास, कभी किसी दर पे जाके माथा टेकता। और एक है जिसने एक जगह ही सजदा करना है, वो एक अल्लाह को राजी करना ज्यादा आसान है कि ये इतने सारों की बातें करनी। इतने सारों को खुश करना, इनके इतने सारों के दर पे जाके, वो एक सजदा ज्यादा आसान है उन सजदों से, या उन इबादतों से जो जो जगह जगह वो जाके कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन किया गया, वो बहुत ही खूबसूरत ये मिसाल है। इसी से आप ये देखें कि सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर, जब हम शिरके जली अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते, लेकिन हम जब शिरके खफी करते, शिरके खफी में क्या है कि हमें ये है कि वो भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, इसकी भी इताअत कर लूँ, किसी की इताअत उसकी इबादत ही है, ठीक है, इसकी भी इताअत कर लूं, उसकी भी इताअत कर लूं, उसको भी खुश कर लूं, उसको भी राजी कर लूं। एक अल्लाह को भी खुश करना है, लेकिन उसके अलावा औरों को भी खुश करना है, औरों की भी इताअत करनी है, उनके भी कहने मानने हैं, उनको भी राजी करना है, तब इंसान का क्या हाल होता है सोचे। यकीन जाने वो जिन जिनको खुश करने, मैंने इसको भी करना है, इसको भी करना है, ये ना नाराज हो जाए, ऐसे करूंगी तो ये ना खफा हो जाए, थोड़ा थोड़ा अल्लाह ताला को भी राजी करना है, लेकिन बाकी भी राजी रहे मुझसे, तो उस बंदे का हाल क्या होता है। यकीन जाने वो हमेशा रोता है, इसलिए कि अगर वो एक अल्लाह को राजी करने के लिए ही कोशिश करता ना, जो असल तौहीद है, खालिस तौहीद है कि बस एक अल्लाह राजी हो जाए, वो जिसके अंदर राजी होता है, अगर उस अल्लाह ताला का हुक्म है कि वालदैन की इताअत करो, तो मैंने इताअत की है, लेकिन अल्लाह की हदूद में रह के, बाउंड्री में रह के आपका दिल मुतमईन होगा, और की इताअत करो अल्लाह ताला के हुक्म के अंडर आपका दिल मुतमईन होगा, लेकिन जहां पे अल्लाह के हुक्म से टकराने लगी, मैंने बस कहा जी मैंने इसकी इसको खुश करना है, इस दोस्त को खुश करना है, इन फलाने जानने वालों को खुश करना है, वो फलां बड़े अमीर हैं, अगर वो मुझसे नाराज हो गए तो क्या होगा, फलां को इतने लोगों को मैंने खुश करना है ना, यकीन जाने कोई भी मुझसे खुश नहीं होगा, और अल्लाह ताला भी नाराज होगा। और अल्लाह ताला का ये वादा है कि जब तुम अल्लाह को नाराज करके लोगों को करते हो ना, अल्लाह ताला उन लोगों का दिल भी तुमसे नाराज कर दे, लेकिन अगर तुम एक अल्लाह को राजी करने के लिए चाहे लोगों को नाराज कर दो, अल्लाह ताला उन लोगों के दिल दोबारा फेर देगा, अल्लाह के हाथ में दिल है, अल्लाह ताला उन लोगों के दिल आपकी तरफ कर देगा, वो आपसे राजी हो जाएंगे, लेकिन आपने क्या चाहा कि अगर मैं सबको खुश करने बैठ जाऊं, अब आज वो आपसे थोड़ी सी बात पे खुश हुए, कल को फिर नाराज हो जाएंगे, फिर आप सर पटकते फिरेंगे और सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि आए मैंने तो इसको खुश करने के लिए देखो क्या क्या नहीं किया, तो क्यों गलत किया ना आपने, आपने अल्लाह को नाराज किया इसको खुश करने के लिए, तो इसने तो नाराज होना ही होना था आपसे, आए देखो मैंने इसकी खातिर, मैंने कई लोग औरतों से कहते सुना देखे मैंने अपने हस्बैंड के लिए क्या क्या नहीं किया, ये चाहता था मैं हिजाब ना लूं, मैंने हिजाब छोड़ दिया, मैंने इसकी खातिर ये कर लिया, मैंने इसकी खातिर इसके दोस्तों की मजलिसों में बैठी, फलां जिधर ये कहता था मैं वहां, आज इसने मेरे साथ ये किया, तो उसने तो करना ही था, अल्लाह ताला आपको दिखा देता, आपने अल्लाह को नाराज कर दिया ना एक इंसान को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला की नाफरमानी की एक इंसान की खुशी की खातिर, वो इंसान तो कभी नहीं खुश होगा। बाज लोग अपने ससुराल को खुश करने के लिए, बाज लोग अपनी दोस्तों को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे काम करते, वो दोस्तें आपका ख्याल है आपसे खुश रहेंगी हमेशा, आप देखिएगा इसको आजमा के देख ले, वो ही दोस्तें आपको एक दिन ठुकराएंगे, अगर आपने अल्लाह को नाराज कर लिया इनकी खुशी की खातिर, तो जब इंसान गुलाम बनता है ना, जगह जगह दर दर का जो गुलाम बन जाता है, इसकी भी गुलामी, ये गुलामी ही है, बस इसकी खुशी मिल जाए, इसकी भी खुशी मिल जाए, उसकी भी खुशी मिल जाए, अब हर एक को खुश करने के लिए दौड़ते भागते फिर रहे हैं, हलकान होते जा रहे हैं, और उसके बाद जब वहां से एक थप्पड़ पड़ता है तो फिर रोते हुए बैठ जाते हैं, हाँ ये देखो उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो फिर सही हुआ ना, ओके मैंने क्यों अल्लाह को नाराज करके इनको राजी करने की कोशिश की, अगर मैं ऑपोजिट करती, अपने अल्लाह को खुश कर देती, एक अल्लाह को खुश करना आसान है, इन सारों को खुश करना मुश्किल, एक दोस्त को खुश करते हैं या एक रिश्तेदार को खुश करते हैं, दूसरा नाराज होता, दूसरे को खुश करने जाते तीसरा नाराज हो जाता, तो एक अपना असूल अगर इंसान बना ले कि एक अल्लाह को खुश करना है बस, इसके ताबे जो भी खुश होता है, इसकी मर्जी के ऊपर जो भी खुश होता है तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी मर्जी करने पे कोई नहीं खुश होता तो मुझे परवाह नहीं है, तो आप देखेंगे आप फिर भी खुश रहेंगे, और आप देखेंगे आप ही आगे विनर होंगे, क्योंकि लोगों के दिल आपकी तरफ मायल हो जाएंगे, फिर इनके ना सही अल्लाह ताला के और लोगों के दिल आपकी तरफ मायल कर देंगे, लेकिन खुशी आपको मिलेगी, और अगर ऐसा ना किया तो रोते ही रहेंगे फिर, क्योंकि किधर किधर भागेंगे, पर शायद आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस कभी किया भी होगा और रोए भी होंगे इस बात के ऊपर, ये देखो मैंने इसके लिए कितना किया और इसने ये क्या किया, क्योंकि अल्लाह को नाराज करके किया ना, इन्ना का मैयतून इन्ना हम मैयतून, वो काफिर जो थे वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाए तो हमारी जान छूट जाए। ये तो आपको पता है, ये सूरत भी मक्की दौर की सूरत है, मिड की सूरत है। इस वक्त तो और ज्यादा मुखालफत भी थी, तो वो कहते थे कि ये ना दुनिया में रहेंगे तो ना हमारे लिए मुश्किल होगी। तो अगर आप सल्लम जब फौत हो जाएंगे तो ये भी तो फौत हो जाएंगे, इन्होंने तो मर जाना है। वो कहते हैं कि ना दुश्मन के मरने के ऊपर खुशी ना मनाओ कि महबूब भी एक दिन मर जाएगा, ये एक मुहावरा है। तो लेकिन कहने का मकसद ये कि मौत तो सबको आनी है, और ये बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई। ये जो लोग कहते हैं ना, ये ना कहो कि आप सल्लम फौत हो गए, बस कहो चेहरा उन्होंने पता नहीं क्या फेर दिया कि क्या कर दिया, पर्दा कर दिया। बस ये कहना भी उनके नजदीक बहुत बड़ी गुस्ताखी है कि आप सल्लम फौत हो गए। कुरान कह रहा है, ये कुरान में इन्ना का मय्यतुन, आप भी मरने वाले हैं, और हर इंसान को मौत आनी, हर इंसान क्या, हर एक जी रूह को सिवाय अल्लाह की जात के मौत आनी है। जब इंसान ये कह दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत ही नहीं हो सकते और फौत हुए भी नहीं, तो आपने उनको क्या हई और कयूम बना दिया, शिर्क कर दिया। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फौत नहीं हुए। जैसे इंसान फौत होता है, जैसे उसकी रूह कब्ज होती है, क्योंकि हर जी रूह को मौत आनी है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसको सोचना कि उनकी बेअदबी है, बेअदबी तो ये है कि जब उनको वो मकाम दे दिया जाए जो अल्लाह ताला की सिर्फ सिफत है, कि सिर्फ अल्लाह हई है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हई बना दिया जाए कि हमेशा जिंदा, तो ये है गुस्ताखी। ये गुस्ताखी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। तो इन्ना का मय्यतुन, तो जो लोग ये कहते हैं वो भी ये पढ़ लें कुरान में। और वो तो बात तो ये अकीदा रखते हैं कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर भी जिंदा बैठे हुए हैं, और वहां पे भी अपनी बीवियों से मिल रहे हैं, उनकी बीवियां आती हैं उनसे मुलाकात करती हैं, और वहीं पे बैठे हुए हैं, हमारी सारी बातें भी सुन रहे हैं और वहीं पे बैठे हुए। अल्लाह अकबर। और ये भी सुन लें कि अगर नबी को मौत आती है तो और कौन बचेगा फिर? अगर किसी को मौत से अबव होना होता तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, लेकिन अगर उनको भी मौत आने का यहाँ पे बता दिया गया तो और कौन बच सकता है? फिर हम सब को भी मौत आनी है और इसकी तैयारी करनी है। तो ये काफिरों को भी वहां पे कह दिया गया, तो तुम मेरे नबी की मौत का इंतजार करते तो तुम खुद कौन सा बच जाओगे? और आज देखो सभी चले गए, वो मुशरिक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का इंतजार करते थे तो वो तो पहले ही चले गए, बदर में कईयों का खात्मा हो गया। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून, फिर कयामत के दिन तुम अपने रब के सामने झगड़ा करोगे। कयामत का दिन ना झगड़ों का भी दिन है, ये वो दिन है जिस दिन के लोग आपस के अंदर झगड़ेंगे। वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि जो इबादत आबिद है वो अपने झूठे माबूद हैं उनके साथ झगड़ेंगे कि तुमने हमें इस तरफ क्यों लगाया, और अंबिया और उनकी उम्मतों में भी झगड़ा होगा कि उम्मत कहेंगे हमें तो कोई पैगाम ही नहीं दिया गया, और अंबिया कहेंगे हमने तो पैगाम दे दिया था। फिर इसी तरह जालिम और मजलूम का झगड़ा, मजलूम जालिम से अपना हक मारे मांगेगा और वो कहेगा कि अपनी जान छुड़ाएगा। इसी तरह जो भी पैरोकार होंगे वो अपने लीडरों के साथ झगड़ा करेंगे, तुमने हमें इस गलत रास्ते पर लगाया था। तो यानी बहुत सारे झगड़े होंगे उस दिन, झगड़े ही झगड़े होंगे, हर कोई झगड़ा। और इवन ये कि इंसान के जिस्म और रूह का भी आपस में झगड़ा होगा, कि जिस्म कहेगा रूह को मलामत करेगा तूने ये कराया, वो कहेगी तूने ये किया था। तो झगड़ों का दिन है वो, जिस दिन आपस में सब लोग झगड़ रहे होंगे, इवन हुक्मरान और राया के भी झगड़े होंगे, कि राया तो जाहिर है हुक्मरानों के गिरेबान पकड़ेगी, मुसलमान के आपस में भी झगड़े होंगे जो एक दूसरे के हकूक मारे होंगे उनके ऊपर झगड़े हो रहे होंगे, तुमने नहीं मेरा हक दिया था तुम मेरा हक दो, वो कहेगा मैंने नहीं तुम्हारा हक मारा, इस तरह के झगड़े होंगे। हत्ता के औलाद और वालदेन में भी जिसने जिसका हक नहीं दिया वो उसके लिए खड़ा होगा और कहेगा कि जो है मैं आज अपना हक लेने के लिए खड़ा हूं, दो मेरा हक मुझे, जिसने जिसके साथ ज्यादती की होगी आप देख लेना दुनिया के अंदर कितनी ज्यादतियां होती हैं, कितनी तरह के झगड़े हैं। आज किसी ने किसी के विरासत में हक दबाया हुआ, चाहे बहन भाई हो, बहनें खड़ी हो जाएंगी कि भाइयों ने हमारा हक नहीं दिया, हमारा हक मार लिया। वालदेन ने विरासत के अंदर डंडी मारी होगी तो औलाद खड़ी हो जाएगी, वालदेन खड़े हो जाएंगे, या अल्लाह इस औलाद को हमने इतना पाला पोसा, इनकी ऐसी तरबियत की, इनको हमने किस तरह से इनके ऊपर अपना वक्त लगाया, अपना माल लगाया, अपना आराम और सब कुछ कुर्बान कर दिया, या अल्लाह इन्होंने हमारे साथ ये किया, इन्होंने हमारी नाफरमानी की, इन्होंने हमारे साथ सब तरह के झगड़े होंगे। कोई खड़ा हो जाएगा कि देखो इन्होंने, इस औरत ने मेरे घर में फसाद डलवाया था, इसने हमारी लड़ाई करवाई थी। अब दुनिया में चाहे बड़ी अच्छे बन के बैठे हो, चुपके चुपके इधर उधर लगाई बुझाई करते रहते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कौन बीच में फसाद फसाद करने वाली औरत है। लेकिन उस दिन जब लोग गिरेबान पकड़ेंगे तो सब सब उस दिन कच्चे चिट्टे खुल जाने हैं ना। जिसने जिसके साथ ज्यादती की होगी, सास ने बहू के साथ की या बहू ने सास के साथ की, आज तो सब अच्छे बन के सबके सामने अपना अच्छा चेहरा कर लेते ना, हम ही मजलूम है, दूसरा ही जालिम है। उस दिन क्या होगा? उस दिन तो कुछ भी नहीं छुपा सकेंगे। तो उस दिन बदलों का दिन है ना, तो झगड़े करेंगे आपस में। तो इंसान जितना मर्जी इबादतों में आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर उसने ये हकूक मारे होंगे तो ये लोग खड़े हो जाएंगे और अपना बदला चाहेंगे और हकदारों को उनका हक दिलाया जाएगा। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि इतने आप परेशान क्यों हो जाते हैं कि जी फलां ने हमारा हक नहीं दिया, और फलां ने हमारा माल खा लिया, और फलां ने हमारे से कर्जा लिया और वापस नहीं दिया, तो अब हम क्या करें? और तो फिक्र ही ना करें, एक दिन तो है। जहां पे बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा है, तो बेसींग बकरी एक जानवर है, और कितनी छोटी सी बात है ना, सींग ही मार दिया था ना। वो बेसींग बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा, तो वो अल्लाह ताला उसको भी जब बदला दिला देगा, तो फिर बताएं जरा कि इंसानों की तो बात बहुत बड़ी है। किसी ने कर्जा लिया हुआ किसी का तो नहीं, दुनिया में दे रहा तो कोई मसला नहीं, कहीं भाग के नहीं जाता। हम कहते कोई पूछने वाला नहीं, हाय देखो मारे गए, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं। पकड़ने वाला तो है, हमें नजर नहीं आ रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी दूसरे शख्स की इज्जत या उसकी किसी भी चीज पर जुल्म किया हो, वो आज ही उसको माफ करा ले, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें उसके पास ना दिरहम होगा ना दीनार। अगर उसके पास कोई नेक अमल होगा तो उसके जुल्म के बराबर उससे वो नेक अमल ले लिया जाएगा, यानी जितना हक मारा था उसने उसके बदले में अब नेकी दो। इसके पास नेक अमल नहीं होगा तो इस जिसने जुल्म किया उसके गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। जिस पे उसने जुल्म किया, जो मजलूम है, उसके गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। और पता है पड़ोसी भी आपस में झगड़ा करेंगे, पड़ोसी भी, पड़ोसी ने पड़ोसी का हक नहीं दिया, नेबर्स ने नहीं दिया, तो वो भी झगड़ा करेंगे। जालिम हाकिम को लाया जाएगा और उसकी राया उसे झगड़ा करेगी। इसी तरह और भी जो झगड़े हैं, जो हिदायत याफ्ता है गुमराह, उनके साथ झगड़ा करेंगे, कमजोर मुतकबिर से झगड़ा करेगा, मुसलमान और काफिर का झगड़ा होगा, ये बहुत झगड़े होंगे उस दिन। क्योंकि कोई किसी को जाने नहीं देना चाह रहा होगा ना, सब चाह रहे होंगे कि हम नेकी कोई ले लें, कहीं से आज हमें कुछ मिल जाए। आपा धापी पड़ी होगी, नफसा नफसी का आलम होगा ना, तो अब किस तरह से मिल सकता है? अब कोई छोड़ेगा किसी को ना? माँ बाप छोड़ेंगे नहीं अपनी औलाद को, तो और कौन किसी को छोड़ेगा? कोई किसी को फॉरगिव नहीं करेगा, सब कहेंगे कहीं ना कहीं से लूट कसूर लो, हम नेकियां अपनी कहीं कहीं से ले लें। इसलिए क्योंकि अगर इंसान के पास नेकी ज्यादा भी हुई तब भी उसको डर है कि कहीं ये ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, कहीं ये ना हो कि मेरी नेकी हल्की हो जाए, तो कहीं से तो नेकियां ले लो, जहां से भी मिल रही है ले लो। अच्छा है किसी ने मेरा देना है तो ये तो बहुत अच्छा है कि यहां आज मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिनों को जहन्नुम से निजात मिल जाएगी ना, यानी पुल सिरात वो क्रॉस कर लेंगे, तो एक पुल पर जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान है उस पे उनको रोक लिया जाएगा, इसको मुकंतरा कहते हैं। वहां पे उनको मजालिम का बदला दिया जाएगा जो वो दुनिया में करके एक दूसरे पर आए थे। फिर जब वो पाक साफ होंगे, उनकी कांट छांट होगी, तब उनको जन्नत में दाखिल होने दिया जाएगा। यानी अब जन्नत चाहे मिलनी भी है, तब भी ये नहीं हो सकता कि अगर किसी का हक देना है तो उसको हक दिए बगैर ही जन्नत में एंटर हो जाए। नहीं, आपने फरमाया जात की कसम कि जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इनमें से हर शख्स अपने जन्नत के घर को दुनिया के घर से बेहतर तौर पर पहचानता होगा। यानी अब जिसका जो दर्जा है, अब देखें अगर नेकियां दे दी, जाना तो जन्नत में, ये सारे जन्नत में जाने वाले, लेकिन अगर एक का मकाम अगर बहुत ऊपर था, लेकिन अब इसको अपनी नेकी देनी पड़ गई, तो अब इसका मकाम क्या हो गया, डाउनफॉल, नीचे आ गया, दर्जा कम हो गया। और वहां पे दर्जे तो आपको पता है ना कितने कितने ज्यादा डिफरेंस है दर्जों का। ऐसे ही कि जैसे हम ये अर्थ हमारे ये जो कुराए अर्ज है, ये हम अपनी जमीन के ऊपर बैठे हैं, तो हम सोचें कि हमारा घर यहाँ पे है ना, तो सोचें कि मेरी दोस्त का घर वो जो सितारा नजर आ रहा है ऊपर, वो उस वहां पे उसका घर है, कितनी दूर और कितना ऊंचा है, इतना होगा डिफरेंस। अल्लाह अकबर, आह अल्लाह अकबर। तो इसलिए वहां पे तो चाहेंगे ना कि ऊपर से ऊपर के दर्जे मिले, और वो ऊपर से ऊपर के दर्जे कैसे मिल सकते हैं जितनी नेकी ज्यादा होगी। अगर नेकी किसी और को दे दी तो उसने ऊपर के दर्जे एंजॉय कर लिए और ये नीचे रह गया फिर, जिसने जुल्म किया था। हम कहाँ कहाँ ज्यादतियां कर रहे हैं, किसी यतीम का हक तो नहीं मारा हुआ, किसी नौकर किसी से काम लेते हुए उसको उजरत में कमी तो नहीं कर दी, किसी को किसी का हक देना था या किसी का हक मेरे जिम्मे नहीं था, मेरे हक किसी के जिम्मे नहीं था और मैंने फिर भी उससे लिया। मसलन डिवोर्स केसेस होते हैं, उतना हक नहीं बनता लेकिन ले लेते, आदमी है उसने मेहर ही नहीं दिया या ना नफका ही नहीं देता अपनी बीवी को, ये सारी चीजें लोग मांगेंगे। डोंट थिंक कि ये कुछ, चलो ये तो छोटी सी बात है, इसको कौन पूछेगा। नहीं, जहां पे बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने सींग ही मारा था ना, तो उसका बदला मिल रहा है, तो यहाँ यहां पे क्या होगा आप सोचें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बहुत मुश्किल दिन होगा, इसी वजह से तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए ना बहुत ज्यादा हमदर्द, बहुत ज्यादा हमदर्द हमारे, तो उन्होंने हमें इसीलिए यहीं पे कह दिया कि यहाँ पे ही अपने ना हिसाब किताब ना क्लियर कर लो, ये ना हो कि आप वहां जाएं तो अपनी नेकियां देनी पड़े तो खुद खाली हाथ रह जाएं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़ब बिस्सिदक इज़ जाअहु, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, यानी ये सबसे ही बड़ा जालिम है, इससे बड़ा जालिम और कौन होगा। मिम्मन कज़ब अलल्लाह, जो अल्लाह पे झूठ बांधे, इसको इतनी भी शर्म नहीं आई कि दोनों पे भी झूठ बांधना गलत है, कोई किसी को कह दे किसी ने कोई बात ना की हो, या वैसे ही किसी के ऊपर झूठ लगा दे, वो तो ऐसी ही है, उसका तो उसके साथ अफेयर है, वो तो उसके साथ है, उसने तो इतना पैसा खा लिया, उसने इस तरह के झूठे इल्जाम किसी के ऊपर लगा दिए जाए तो ये भी उसके लिए बहुत तकलीफदेह बात होती है, ये भी बहुत उसके लिए ये बुरी बात है कि किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा। और कहाँ कोई इतनी जुर्रत कर दे कि अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांध दे, कदब अल्लाह, अल्लाह पर, यानी अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांध लगा दे। सबसे बड़ा झूठ क्या है अल्लाह ताला के ऊपर लगाना, कि उसका कोई शरीक है या उसकी कोई औलाद है, औलाद भी शरीक के तौर पे ही बनाई जाती है ना, कि उसकी कोई औलाद है, ये सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया का। उसके अलावा भी बहुत सारे झूठ हैं, जैसे अल्लाह ताला ने कोई चीज हलाल नहीं की उसको हलाल के कह देना, नहीं ये तो हलाल है, या अल्लाह ताला ने हराम नहीं की खुद ही कह देना ये तो हराम है। और झूठ में ना इब्ने हजर ने इसकी डेफिनेशन जो की है वो झूठ की क्या है, कदिब की क्या है, कि किसी चीज के बारे में ऐसी खबर देना जो खिलाफ हकीकत हो, ये अब गौर से सुने, चाहे जानबूझ के कही जाए या भूल चूक से, ठीक है, यानी ये नहीं कि जानबूझ के नहीं किया लेकिन अनजाने में हो गया, या पता ही नहीं था, जहालत में हो गया, समझ ही नहीं थी तो ऐसे ही बोल दिया मुंह से, नादानी में बोल दिया, गफलत में बोल दिया, बेध्यानी में बोल दिया, तब भी झूठ है, तब भी कहा गया वो सबसे बड़ा जालिम है जो अल्लाह के ऊपर झूठी बात लगा। आपको पता है ये कितनी आराम से हम बातें बोल देते हैं बाज दफा अपने मुंह से, लेकिन बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब अल्लाह ताला के बारे में कोई बात करे। ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए, जब अल्लाह ताला के बारे में बात करें तो 110% आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये बात अल्लाह ताला ने ऐसे फरमाई है, तो तब बोले। वरना ये वो अल्लाह ताला ने तो ये हलाल किया, अल्लाह ताला को तो ये बात पसंद नहीं है, और ये कहाँ कुरान में लिखा? वो कुरान में लिखा हुआ तो कहते हैं ये कहाँ कुरान में लिखा, अब कहाँ पता है? ये झूठ है अल्लाह के ऊपर लगाना कि ये कुरान में लिखा ही नहीं। कितना कॉमन है ना ये कहना, ये कहाँ लिखा है जी कुरान में, हालांकि वो होता है कुरान में। तो आपने झूठ बांध दिया अल्लाह ताला के ऊपर कि उसने ये नई बात कही भी, हालांकि उसने ये बात कही भी है। और यहां पर ये कहते ना कुरान में तो ये लिखा हुआ, एक जगह किसी को कहते हुए सुना कुरान में लिखा है कि औरतें कयामत के नजदीक ज्यादा होंगी, कहां कुरान में लिखा आप खुद बताएं, कुरान में ये नहीं लिखा हुआ, ये झूठ है ना। अब पता नहीं होता लेकिन वो बात कह दी जाती है, बहुत आराम से कह दी जाती है। इसी तरह मनमानी तफसीरें करना, खुद ही कुरान कुछ कह रहा है, नहीं अल्लाह ताला ने तो ये फरमाया, अल्लाह ताला ने तो इस बात का तो ये मतलब है। झूठ अल्लाह के ऊपर लगाना, हालांकि हमें पता है कि इसकी तफसीर ये नहीं है, इसकी तफसीर वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, वो खुद ही उसकी तफसीरें करते जा रहे हैं, खुद ही उसको मनमाने माने पहनाते जा रहे हैं। देखे नहीं, इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अब एक और भी नबी आ सकता है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसे कहे। इससे ये पता चलता है, इससे वल फजर व लयाले नशर, वल फजर एक और लयाले नशर 10, 10 और एक क्या हुआ 11, 11वीं का देखो ये सबूत कुरान के अंदर है। इस तरह की यानी मन मानी इसी कुरान के अंदर से ऐसे ऐसे नुक्ते निकाल निकाल के और अपने गुमराहकुन अकीदों को, जो गलत अकीदे हैं उनको प्रमोट करना, उनके लिए दलायल देना, ये झूठ है अल्लाह के ऊपर। इसी तरह ये भी कि कोई कहे कि मेरे ऊपर वही आती है, मिर्जा कादियानी मलऊन ने कहा कि मेरे ऊपर वही आती है अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना है। अल्लाह ताला ने किसी के ऊपर वही नहीं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो उसने अल्लाह की जात को भी नहीं छोड़ा उसके ऊपर झूठ बांध दिया। हालांकि अगर एक भोली भाली मासूम औरत के ऊपर कोई तोहमत लगाता वो भी कबीरा गुनाह है, और अल्लाह ताला के ऊपर तोहमत लगा देना, ये झूठी बात कह देना जो अल्लाह ताला नहीं कही भी, अल्लाह तो ये हुक्म देता है, अल्लाह ताला ने तो वो हुक्म ही नहीं दिया, खुद ही बना लिया, ये क्या है अल्लाह पे झूठ बांध। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वइजा फालू फाहिशतन कालू वजदना अलैहि आबाना वल्लाहु अमरना बिहा, जब वो फोहश काम करते हैं ना उसके बाद कहते हैं हमने इसी तरह अपने बाप दादा को करते हुए देखा और अल्लाह ने इसका हुक्म दिया हुआ है, हालांकि अल्लाह ताला ने इसका कोई हुक्म नहीं दिया। तो यानी बाज दफा अपनी बातों को ज्यादा वजन देने के लिए क्या कहते हैं, अल्लाह ने इसका हुक्म दिया, हालांकि अल्लाह ताला ने नहीं दिया होता। वकज़ब बिस्सिदक, और झुटलाए सच्चाई को, उससे ज्यादा बड़ा जालिम कौन हो सकता है? सबसे बड़ी सच्चाई क्या है इस कायनात की? तौहीद है, तौहीद को झुटलाए वो बहुत बड़ा जालिम है। हम तो जालिम सोचते हैं, पता नहीं हमारी डिक्शनरी में जालिम शायद वो होता होगा जो किसी को मारता है, किसी को कत्ल करता है, लेकिन सबसे बड़ा जालिम ये है। और ऐसे जालिम हमारे माशरों में कितने आराम से बैठे होते हैं, जो अल्लाह के ऊपर भी झूठ बांध रहे हैं वो अपने आप को तो बहुत मासूम समझते हैं, लेकिन कुरान कहता है वो सबसे बड़ा जालिम है। और कौन? जो सिद्क को झुटलाए, तौहीद को झुटलाने वाला, या इस कुरान, और सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? ये कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, ये भी सच्चाई है, इसको झुटलाए, सिद्क, ये सब चीजें सिद्क है, इसको झुटलाए। इस जब आ गया उसके पास, यानी उसे रिजेक्ट कर दिया, इस दीन को रिजेक्ट कर दिया, कुरान को रिजेक्ट कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को रिजेक्ट कर दिया, अल्लाह ताला के फरामीन को रिजेक्ट कर दिया, ये सब सच्चाइयां हैं, तो वो बहुत बड़ा जालिम है। अब देख लें, आज जो आपको समझ आई कि कौन सबसे बड़ा जालिम इस दुनिया में, इनको तो हम जालिम ही नहीं समझते। कोई बात नहीं, ये तो आम सी बातें हैं। इवन ये कह देना कि अल्लाह ने कभी इसको माफ नहीं करना। कितने आराम से किसी को कोई गुनाह करते देखते हैं तो कहते हैं अल्लाह ने कभी इसको माफ नहीं करना, इसको तो अल्लाह ने माफ ही नहीं करना, ये तो कभी जन्नत में जा ही नहीं सकता, या ये तो है ही जन्नती। ये अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना नहीं है, क्योंकि आप अल्लाह ताला से ऐसी बात मंसूब कर रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं। आपको पता है शैतान ये कराता है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि शैतान इंसान को कहता है कि अल्लाह ताला पे वो बातें कहो जो वो नहीं जानता है। इंसान नहीं जानता ना, उसके मुंह से ऐसी बातें निकलता है, उसको पता है ना कि ये ऐसी बातें करेगा तो इसकी तो सबसे बड़ा जालिम हो जाएगा, इसकी तो आखिरत ही बर्बाद हो गई, तो इससे ऐसी बातें करवाओ। तो इंसान बाज दफा अनइंटेंशनली या बेइल्मी में ऐसी बातें कर रहा होता है। तो ये देख लेंगे कुरान हमें ना बताए तो हम भी इस तरह की हरकतें करते करने वाले हो सकते हैं, अल्लाह बचाए इससे। अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते सुना कि बनी इसराइल में दो लोग थे, एक दूसरे के भाई थे, वो उनमें से एक गुनाह करता था और दूसरा इबादत में बहुत मेहनत करता था। जो इबादत बहुत करता था ना, वो दूसरे को जब गुनाह करते हुए देखता था तो उसको रोकता। एक दिन उसने गुनाह करते हुए दूसरे को देखा तो उसने कहा कि गुनाह से रुक जा। तो वो जो गुनाह करने वाला भाई था ना, तो वो कहने लगा मुझे मेरे रब के साथ छोड़ दो, तुम मेरे ऊपर कोई निगरान नहीं। अब आपको भी अगर कोई ऐसा कह दे कि आप मेरे ऊपर कोई दारोगा नहीं है, आप अपना काम करें मुझे छोड़ दें, तो अब आप आगे से क्या कहेंगे? अब गुस्सा कितना आएगा कि मैं तो देखो इसको एक अच्छाई की बात बता रही थी और इसने आगे से ये कहा। अब उसको भी गुस्सा आया होगा, उसने आगे से क्या कह दिया, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे कभी माफ ही नहीं करेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह हमें माफ करे कि हमारे मुंह से कभी ऐसी बात ना निकले, लेकिन कभी निकल जाती है ऐसे गुस्से में, किसी से निकल सकती है। बस अल्लाह तो खास तौर पे जब अगर आपको कोई कह दे कि जाए जाए अपना काम करें और आप मेरे ऊपर कोई दारोगा नहीं मुझे छोड़ दे, तो आगे से नहीं बस अब देखना, अब तो अल्लाह तुझे कभी माफ ही नहीं करेगा। इस तरह की बात अगर कभी कही भी है तो बहुत तौबा इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि क्या हुआ इस हदीस में आता है अल्लाह तआला ने दोनों की रूहें कब्ज़ कर ली, दोनों अल्लाह ताला के सामने पेश हुए। इबादत गुजार जो था उससे अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तू मुझे जानता था, या जो मेरे हाथ में है तुझे किसने ये कुदरत दी कि तू फैसले करे मेरे लिए, कि तू मेरे ऊपर ये बात लगाए कि अल्लाह कभी इसको माफ नहीं करेगा। देखिए ना अब ये कितनी बड़ी बात है। फिर अल्लाह ताला गुनागार से फरमाएगा, फरमाता है कि जा मेरी रहमत से जन्नत में चला जा, और इबादत गुजार से फरमाता है जा तू आग में चला जा। अबू हुरैरा कहते हैं उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने ऐसी बात कह दी जिससे उसकी दुनिया भी गई और आखरत भी गई, बर्बाद हो गई। वो दुनिया में भी जाहिर है उसको उसकी जिंदगी खत्म हो गई उसी वक्त, का अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया इनकी जान कब्ज कर लो, और आखरत तो बर्बाद ही हो गई। वो जो अपने आप को इबादत गुजार समझता था सिर्फ एक बात कहने से कि अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करे, अल्लाह पे झूठ बांधा ना तुमने, तुम्हें क्या पता अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा, और तुम्हें क्या पता कि कोई जन्नती है कि नहीं है। आप दुआ दे सकते हैं किसी को अल्लाह इसको जन्नत और फिर दुआ सता फरमा, लेकिन ये नहीं कह सकते ये तो है ही जन्नती या ये तो है ही ऐसी चीज। अल्लाह ताला के बर्बाद करने में बहुत केयरफुल रहे, और फिर वो सिद्क को भी झुटलाए, यानी इस कुरान को झुटला रहा है या तौहीद को झुटला रहा है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को झुटला रहा है। अब कुरान के एक हुक्म को झुटलाना भी सारे कुरान को झुटला देना है, एक हुक्म मुझे नहीं पसंद आ रहा तो बस मैंने उसको नहीं नहीं ये तो है ही नहीं है, ये तो सही नहीं है, ये तो उस वक्त की बातें हैं, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं, ये तो फलाह है, झुटलाना सिद्ध को। अलैहिस्सफी जहन्नम मसफल लिल काफिरीन, ये काफिर हैं, इनको अल्लाह ताला ने काफिर करार दिया है जो अल्लाह पे झूठ बांधे या झुटलाए सच्चाई को। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या जहन्नम में काफी ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं है काफरों के लिए, यानी है जहन्नम में फिर इनका ठिकाना है, एक यानी इस्तफा में इनकारी जिसको कहेंगे कि क्या नहीं है ठिकाना, या इस्तफाम की सूरत एक कहेंगे कि एक सवाल की सूरत की गई, क्या जैसे कहें क्या इनके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, यानी है बहुत जगह। वल्लदी जाए अब इस सिद्क, और जो लेकर आया सच्चाई को, वह सद्दका भी, और जिसने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही मुत्तकी लोग हैं। वो बंदा जो सच्चाई लेकर आया, सबसे बड़ी सच्चाई तौहीद है मैंने आपको बताया, और तौहीद का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले लेकर आए और आपसे पहले तमाम अंबिया भी लेकर आए, तो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए और तमाम अंबिया भी लाए। और वह सद्दका भी, और जिसने तस्दीक की इसकी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक की। उलमा कहते हैं कि इसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक का पहले सबसे अव्वलीन उनका नाम आता है, इसलिए क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त तस्दीक की जब सार मुखालफत कर रहे थे और मेराज के पर आपके जाने की इनकार कर रहे थे काफिर, और इसको बहुत ला मुहाला चीज समझ रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने तस्दीक की थी, इसलिए वो सिद्दीक कहलाए थे। तो यहां से पता चलता है हमें कि जा अब सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सद्दका भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन इनके अलावा भी मुफस्सिरीन कहते हैं जो बंदा भी तौहीद की तरफ लोगों को दावत देता है वो भी इसके अंदर आ जाता है, जो लेकर आया और जिसने तस्दीक की। ये वो खुद भी हो सकता है, इसलिए कि इंसान जो पैगाम लेकर आए सबसे पहले उसकी खुद तस्दीक करे कि मैं सबसे पहले इसको मानती हूँ, ये नहीं कि सारा जगह पैगाम लेके फिरते रहे और खुद उस पैगाम में शकुक को शुभात हो। और दूसरे भी कि जो तौहीद की दावत देता है और जो उस दावत के ऊपर लब्बैक कहता है, जो इस दावत को कबूल करता है, वो सब इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। ये सब मुत्तकी हैं, ये सब लोग मुत्तकी हैं, और इनका बहुत बड़ा मकाम है जो सच्चाई की तस्दीक करने वाले हैं। और मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, तौहीद और कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, ये सब सच्चाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का पैगाम भी लेकर आए, इस कुरान को लेकर आए। तो जो तस्दीक करेगा, जो कहेगा कि हाँ ये सही है, क्या सिर्फ कहना काफी है या फिर उसके ऊपर फिर जो तस्दीक कर ली फिर उसके ऊपर अमल भी करना होता है? आप अगर मान लेते हैं कि ये बात सही है तो फिर तो जाहिर है उसके ऊपर चलेंगे ना, ये तो नहीं कि उसको छोड़ के फिर झूठ पे चलना शुरू हो जाए। तो बुखारी के अंदर इन लोगों के मकाम को बयान किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले जन्नत बलाई मंजिल वालों को अपने ऊपर इस तरह देखेंगे जैसे लोग आसमान के सितारों को देखते, आसमान पे जो सितारे होते हैं मशरिक या मगरिब, मैंने जैसे भी आपको बताया हम जमीन पे रह रहे हैं और हम आसमान के तारे देखे कितनी दूर है, तो अहले जन्नत बलाई मंजिल वालों को यानी ऊपर अपने से ऊपर मंजिल वालों को इस तरह देखेंगे, तो यानी ऊपर के मर्तबे वालों को जैसे हम जमीन पे रहने वाले उनको उस सितारों को देखते हैं। तो सहाबा सोचने लगे कि ये तो फिर वो ऊपर मंजिल वाले जो होंगे, ऊपर मर्तबे वाले जरूर वो नबी वगैरह ही होंगे, और कौन हो सकता है? तो उन्होंने पूछा कि या रसूल वो कौन लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि या रसूल वो तो कोई अंबिया ही होंगे फिर, तो जो इतने बुलंद होंगे और तो कोई नहीं वहां पे पहुंच सकता, इतनी बुलंदी किसको मिल सकती है? तो आपने फरमाया क्यों नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और रसूलों की तस्दीक की वो इन मरातिब को हासिल कर लेंगे। अल्लाह अकबर, यही मुत्तकी लोग हैं। यानी अगर आप मुत्तकीन की डेफिनेशन देखना चाहें तो यहां से भी आपको मिलती है कि मुत्तकी कौन होता है, वो ये लोग होते। तो हम क्या सच्चाई की तस्दीक करते हैं या झूठ पे चलने वाले हैं? झूठी बातों को प्रमोट करना, झूठी बातें करना और झूठ को फैलाना, या सच्चाई की बात करते हैं? क्यामत के दिन भी सच्चों को उनके सच का अल्लाह ताला बदला देगा। लहुम मा यशाउना इंदा रब्बिहिम, एक तो वो मुत्तकी लोग हैं और उनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे उनके रब के पास होगा। सबसे पहली तफसीर तो इसकी क्या है, जन्नत, इसलिए कि जन्नत ही सिर्फ वो जगह है जहां पे जो इंसान चाहेगा वो उसको हासिल होगा। लेकिन उसके अलावा लहुम मा यशाउना इंदा रब्बिहिम में मुफस्सिरीन इतनी प्यारी तफसीर करते हैं, आप बताएं आप अपने लिए क्या चाहते हैं कि मतलब आखिरत में मेरे लिए क्या हो? जन्नत तो है ही, लेकिन और क्या चाहते हैं? देखिए ना, आप शुरू से शुरू हो जाएं, या अल्लाह मौत की सख्ती खत्म कर देना, मौत की सख्ती ना हो, फिर उसके बाद कब्र का अजाब ना हो, फिर कब्र के अंदर भी जन्नत की तरफ की अल्लाह ताला हम आए, हमें आए वहां की खिड़की खुले, हद्दे निगाह तक कुशादा हो जाए, हिसाब कब्र के अंदर ना सख्त हो, फिर हशर के दिन की सख्तियों से पनाह मांगते हैं, फिर उस दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया दे दे, फिर कितना ही सारी चीजें हैं ना, हम कहते हैं अल्लाह उस दिन हिसाब आसान कर देना, मीजान में मेरी नेकियों को भारी कर देना, पुल सिरात पे से तेजी से गुजार देना, अल्लाह ताला अपने पकड़ना उस दिन करना, मेरे से सवाल ना ज्यादा करना। तो ये सारी हमारी चाहते हैं ना, यहाँ पे यही कहा गया, लहुम मा यशाउना इंदा रब्बी, जो वो चाहेंगे, यानी स्टार्ट जब आखरत शुरू हो गई, मरने के वक्त से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक जो भी चाहेंगे वो होगा उनके रब के पास उनके लिए, सुबहान अल्लाह। लेकिन ये जालिका जजा उल मोहसिनी, ये जजा मोहसिनीन की है, सबकी नहीं है। ये मोहसिनीन के लिए जजा है जो एहसान करने वाले, यानी ये शर्त पूरी करोगे तो फिर वो कहते ना सत्ते खैरा के, पर खैर ही खैर है फिर तो, बस मरने से लेके जन्नत तक सारे मरहले ही आसान है, कहीं पे भी नहीं सकती, कहीं पे भी नहीं मुश्किल आएगी, जो वो चाहेंगे। और इंसान क्या चाहता है, कोई भी नहीं चाहेगा मुझे सख्ती मिले, सभी अच्छाई चाहते हैं ना, सभी आसानियां चाहते हैं ना, सभी बचना चाहते हैं अजाबों से, उस घबराहट से, उस दिन की परेशानी से, वो सब उनको मिलेगा। लेकिन ये काम भी आसान नहीं है कि इंसान मोहसिन बन जाए, एहसान के लेवल पे काम करे। मोहसिन हुसन से है, उसके हर काम में हुसन हो, उसकी इबादत में, उसके मामलात में, लोगों के साथ डीलिंग में, उसके अखलाक में, उसके रहन सहन में। हुसन का मतलब ये नहीं कि हम हसीना बन के बैठ जाएं, कपड़े वैसे पहन लिए और ऐसे कर लिए, यानी सब ऐसा हो कि जो जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसके मुताबिक तो है ही, लेकिन बेस्ट लेवल का। देखिए ना, एक मिसाल मैं उसकी आपको हमेशा देती हूँ कि मसल आपने पानी मांगा बच्चे से, अब एक बच्चा पानी लेकर आया है, ड्रिप कर रहा है, हाथों में भी पानी लगा हुआ है, ऊपर से ग्लास को पकड़ा हुआ है, जैसे तैसे कहीं से भी लेकर आ गया, आधा सा ग्लास भरा हुआ है, पूरा भरा भी नहीं हुआ, और बस ऐसे लाके आपके हाथ में पकड़ा दी। दूसरे ने अच्छे तरीके के साथ ग्लास को साफ किया, उसके नीचे एक ट्रे रखी, उसके अंदर अच्छे तरीके से ला के आपको प्रेजेंट किया। अब किस में हुसन है, दोनों ने काम तो किया है, लेकिन एक का काम एहसान के लेवल पे ब्यूटिफाई किया हुआ है उसने, उसको बेस्ट तरीके से किया है, उसको हाईएस्ट लेवल का किया है। दूसरे ने करा तो है, पानी उसने भी लाके दिया, लेकिन बस ऐसा ही। नमाज दो लोग पढ़ते हैं, एक ने पढ़ी उसने मारे बांधे की, दूसरे ने पढ़ी सजा संवार के नमाज को, खूबसूरत करके पढ़ा, ये इबादत का हुसन है। मामलात में भी, डीलिंग में भी, एक बंदे का हक नहीं बनता, लेकिन उस आपने उसको भी उस दे दिया हक। एक बंदा आपके साथ अच्छा नहीं भी करता, आपने उसके साथ भी अच्छा कर लिया, ये है एहसान। यानी बेस्ट पे रहना, सबसे आगे में रहना, ये नहीं कि तुम्हें क्या जरूरत है, उसने तुम्हारे साथ किया था जो तुम कर रही हो, तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी भी। ये है एवरेज लोगों के काम, ये है वो जो बस अदले बदले के करते हैं, उसने तुम्हें बुलाया तुम उसको बुला लो, तुम उसने नहीं तुम्हें बुलाया तुम्हें क्या मुश्किल है। अच्छा उसने तुम्हें तोहफा दिया था, तुम भी दे दो, नहीं दिया तो तुम्हें क्या है। लेकिन जो मोहसिन होता है वह ऐसा नहीं होता ना, उसने ये नहीं देखना कि दूसरे का क्या मामला है, उसने बेस्ट पे रहना है बस, हर जगह पे बेस्ट पे रहना है। अब हम दुनिया के मामलात में तो देखते हैं कि बेस्ट मेरे मार्क्स आए, बेस्ट लगूं मैं सारी दावत के अंदर, सारी पार्टी में मैं हसीना आलम लगूं सबको, मैं बेस्ट अपने हाल हुलिये में हूं, मैं खूबसूरत नजर आऊं। अमल में खूबसूरत कौन है, वो मोहसिन है। देखने में खूबसूरत नहीं, मेकअप में खूबसूरत नहीं, ज्वेलरी में खूबसूरत नहीं, अमल में कौन खूबसूरत है, किरदार में किसके खूबसूरती है, अखलाक में किसके खूबसूरती है, जुबान में किसके खूबसूरती है, ये चीजें हैं जो इंसान को मोहसिन बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे हम फौरन कैलकुलेशन पे आ जाते हैं ना, कैलकुलेट करूं कि कितना किसको देना है, कितना किसके साथ रखना है, कितना नहीं रखना, वहां पे ही हम मार खा जाते हैं। जब कैलकुलेशन हम छोड़ देंगे ना, वो बस मैंने बेस्ट पे रहना, अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने किया जो किया वो उसका है, मेरा बेस्ट होना चाहिए, तब आप मोहसिन बन जाएंगे। इबादत में मैंने बेस्ट करनी है, रोजा मेरा बेस्ट हो, मेरी नमाज बेस्ट हो, मैं सदका कर रही हूँ बेस्ट होना चाहिए, मैंने जितने अपने काम करने हैं वैसे। इवन देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह हु अकबर, हमारा तो दीन क्या है, आप जानवर को भी ज़बह करते हैं ना, उसमें भी एहसान का मामला को, कैसे कि उसमें भी छुरी को तेज कर लो, उसको जिस तरीके के साथ करना है वैसे करो, बेस्ट उसमें भी करो, तो बाकी मामला तो क्या रह जाते। अब चाहे वो हमारे नौकर चाकर हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे वो हमारे दोस्त अहबाब हैं, चाहे वो हमारे हमसाए हैं, चाहे हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं, कहीं किसी कहीं जॉब करते हैं, अपने सारे कामों में हुसन ले आए, बेस्ट लेवल का करना। डजेंट मैटर कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं, डजेंट मैटर कि किसी जगह से मुझे कोई अप्रिसिएशन मिलेगी या नहीं, डजेंट मैटर कि उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, मैं चाहे मारे बांधे का कर लूं, चाहे मैं सर से उतारने वाले कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मैंने बेस्ट करना, क्योंकि अल्लाह ताला को मोहसिनीन पसंद है, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है मोहसिनीन से, और मोहसिनीन को ये जजा मिलनी है। तो तब लहुम्मा यशा होना इन रब्बिहिम, ये होगा तब उनके लिए, वो सब कुछ होगा उनके रब के पास, जो वो चाहेंगे तब हमारी चाहत पूरी होगी वहां पे। तो अपनी चाहत कहाँ पूरी करनी है, यहाँ करनी है कि वहां करनी है, ये हम पहले डिसाइड कर लेना। अगर तो यहाँ करनी है तो वहां पूरी नहीं हो सकती, एक जगह ही पूरी हो सकती। जो लोग चाहते हैं कि बस मेरी यहाँ पे सारी चाहतें पूरी हो जाए ना, तो वहां पे नहीं पूरी हो सकती। जो अपनी चाहत को शिफ्ट कर देते ना, मेरी बस वहां की चाहतें पूरी हो जाए, यहाँ की वो ना हो, यहाँ पे मेरी चाहत वही है जो अल्लाह की चाहत है, वो देखेंगे। और उस दिन उनसे पूछा जाएगा, आप बताइए, आप कहें आपकी चाहत क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इस तरह की हमें जज्बे भी दे, और इस तरह की हमें तौफीक भी दे, और इस तरह का हमें ख्याल दे। हमारी तो सोचे भी इस तरफ नहीं जाती कि हमने ऐसे करना है और वहां पे हमें इतना कुछ मिल सकता है। देखिए ना, ये आयत हमें अगर हम लिख लें, लहुम्मा यशाउना इंदा रब्बी, इसमें नीचे लिख लें मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मुझे क्या क्या चाहिए। अल्लाह ये भी कर देना, ये नूर से मुनव्वर कर देना मेरी कब्र को, कब्र में कुरान को मेरा साथी बना। मैं तो सोचते जाए ना, आप कितना कुछ है, अब ये सब कुछ मिल सकता है। हाँ मिल सकता है, अगर मैं मोहसिनीन की फहरिस्त में शामिल हो जाऊं। लियुकफिर अल्लाहु अन्हु अस्वल्लदी आमिलू, अच्छा अभी इतना बस नहीं है, और भी है, ताकि दूर कर दे अल्लाह इनसे बदतरीन वो जो उन्होंने अमल किए, जो गुनाह के काम थे ना, अल्लाह ताला उनके जो मोहसिनीन है उनसे इन सारी बुराइयों को दूर कर दे। इसका मतलब है कि उनसे भी कभी कोई गलती हो सकती है, पास्ट में हो चुकी होगी, जैसे सहाबा करहम का माजी जो था उसमें बहुत सारी ऐसे काम थे, कहीं शिर्क था, कहीं शराब नोशी थी, कहीं बच्चियों को जिंदा दरगोर करना। अब वो सारे गंदे काम है, गुनाह के काम है, अल्लाह ताला उनको ऐसे ढांप देगा, कयामत के दिन अल्लाह ताला बुलाएगा भी ना, तो वो काम बताएगा, ये तुमने किए, और चलो मैंने तुम्हें इसके ऊपर माफ कर दिया। और जब वो इंसान का पर्दे में उसका हिसाब करके जब उसको बाहर अल्लाह ताला भेजेगा, यानी लोगों के अंदर वो निकलेगा, तो वो इतना खुश होगा, हाँ मुकराओ किताब ही, वो अपनी किताब के नारे लगाएगा, देखो आओ मेरी किताब देखो, उसमें सारी नेकियां ही लिखी होंगी, गुनाह तो अब मिट गए, अल्लाह ताला ने उनको ढांप दिया। तो कभी इंसान अगर परेशान हो पुराने गुनाहों के ऊपर, तो अब मोहसिन बन जाएगा ना, तो उस पुराने गुनाह भी माफ हो जाएंगे। अब नेकी के कामों के अंदर दौड़ लगाना शुरू कर दे, और सिर्फ दौड़ नहीं लगाए, वो अच्छे तरीके से करने की भी कोशिश करें, अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें, फिर किसी की हेल्प कर दे कि इसने मेरी तो हेल्प की ही नहीं थी, मैं क्यों करूं, और मैं क्यों आउट ऑफ द वे जाऊं, मेरे पास क्या और काम नहीं है। तो ये फिर मोहसिन तो ना हुए। आप कर सकते हैं किसी के लिए भला, कर दे, आप कुछ दे सकते हैं किसी को, दे दें, आप फायदा पहुंचा सकते हैं किसी को, पहुंचा दें, लेकिन फिर मैं पहले तो देखूं ना कि इसने मुझे क्या फायदा पहुंचाया, या इससे मुझे मिलेगा क्या उसके बाद, ये फिर मोहसिन नहीं बन सकते। ठीक है, तो अस्वा जो उनका बदतरीन, जो उनका बुरा अमल था, अल्लाह ताला उसको भी ढांप देगा। तो छोटे छोटे तो बुरे अमल तो वैसे ही फिर उमट हो गए ना, अगर अल्लाह ताला बड़े बड़े बुरे अमल को भी खत्म कर देगा, उनको भी ढांप देगा, उनको भी दूर कर देगा, तो सोचे छोटे बुराइयां तो फिर इसलिए अस्वा कहा गया ना, छोटी बुराइयां तो फिर हो ही गई माफ। वह यजजीहुम अजरहुम बि अहसन अल्लज़ी कानू यअमलून, और अजर देगा, ऐसे नहीं कि अजर उतना ही उतना देगा, बि अहसन, अहसन के साथ, उससे ज्यादा अच्छे के साथ, जितना उसने अच्छा किया ना उससे ज्यादा अच्छे के साथ अल्लाह ताला उनको बदला देगा, अजर उनका एहसान के साथ। वो भी तो मोहसिन थे ना, तो अल्लाह ताला भी उनको आसन बदला अता फरमाएगा, यानी अगर उसने एक किया तो 10 गुना तो वैसे ही है, हो सकता है अल्लाह 700 गुना कर दे, या बेहिसाब ही अजर दे दे, इतना भी वादा है कि कई उनको बेहिसाब अजर मिलेगा। और एहसन कैसे बदला भी, ये भी कि अल्लाह ताला हो सकता है उसकी बुराइयों को भी नेकियों में बदल दे, ये भी आता है ना सूरह फुरकान में कि अल्लाह ताला उनकी गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा, इतना अल्लाह ताला मेहरबान है, ये आसन है उसका रिवॉर्ड कि जितना उन्होंने किया उससे ज्यादा बेस्ट हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाके अल्लाह ताला उनको रिवॉर्ड देगा, क्योंकि उन्होंने भी हाईएस्ट लेवल के ऊपर नेकियां की थी। अल्लाह हू अकबर। और नियत तक के ऊपर जब बदला दिया जा रहा है तो ये आसान ही है ना। अल्लाह कानू या मालूम, अल्लाह ताला जब रिवॉर्ड करने लगता है तो सोचे कितना प्यारा रिवॉर्ड है कि वो बुराइयां भी जो बदतरीन थी, बुरे अमल, वो भी ढांप दिए, और जो नेकियां उनका भी रिवॉर्ड कई गुना बढ़ा के दे दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अलैहिस्सल्लाहु भी काफिन अब्दाहु, क्या अल्लाह काफी नहीं है अपने बंदे के लिए। वो लोग डराते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहते थे कि आप हमारे माबूदों की शान में गुस्ताखियां करते हैं, इनके खिलाफ जुबान दराजियां करते हैं, इनको ऐसा ऐसा बुरा भला कहते हैं, देखना अब हमारे बुतों की मार पड़ेगी आपके ऊपर, और ऐसा होगा नऊजु बिल्ला इस तरह की, अब ये हलाक कर देंगे आपको और ये आपका नुकसान कर देंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं, कहाँ कहाँ काफी है अल्लाह, हर जगह काफी, हर जगह। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। मैं ये तवक्कल अल्लाह फहुआ हसबू, अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह पर तवक्कल करेगा ना अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। तो किसके लिए अल्लाह काफी होता है? अबदहू, अपने बंदे के लिए, जो अल्लाह का बंदा बन के रहे, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदगी करने वाला, उसकी गुलामी करने वाला, उसका कहना मानने वाला, तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। ये कितनी इंसान को तसल्ली देने वाली बात है, इसको हाईलाइट कर ले। और जब भी दिल घबराने लगे ना तो सोचा करें अलैहिस्सल्लाहु भी काफी ना बता हो, अल्लाह काफी नहीं है। मैं गए क्यों, अगर लोग मुझसे मुंह मोड़ भी रहे हैं, कहीं से मुझे हेल्प नजर नहीं आ रही, क्या अल्लाह काफी नहीं है अपने बंदे के लिए? अल्लाह काफी है। अब हमें क्या घबराहट शुरू हो जाती, हाय उसने उसने भी कह दिया नहीं हो सकता, उसने भी कह दिया नहीं हो सकता, हाय कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं। पांच दफा ना अल्लाह ताला इन्हीं सहारों से बेवफाई करा के या इनकार करा के या इनसे ये मुंह मोड़ते हैं, अल्लाह ताला इस तरह कराता है ताकि हम अल्लाह को अपना सहारा समझें सिर्फ। बाज दफा हमने ये वीक से सहारे बनाए होते हैं ना, और इनको सब कुछ समझ रहे होते, मेरे बच्चे अगर ये छोड़ गए तो क्या होगा, हाय अगर मेरे फलां जो कॉन्टेक्ट हैं या फलां दोस्त हैं, हाय अगर इन्होंने ना मेरा साथ दिया तो क्या होगा, अगर फलां जिन जो वजीर है वो मुशीर है वो इतनी बड़ी कुर्सी पे है, अगर वो हट गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। नहीं, बंदे कुछ नहीं कर सकते, अगर ये बंदे कभी आपकी मदद करें भी ना तो तभी कर सकते हैं जब अल्लाह ताला ही इनको तौफीक दे, इनके दिल में डाले और इनसे करवा ले, वरना ये हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन हम फिर भी इनको सहारा बनाते हैं, और फिर बहुत दफा हम फिर दुखी किस लिए होते, इन्होंने हमें छोड़ दिया, या फिक्रें क्यों होती, क्योंकि ये नहीं हमारे साथ खड़े हुए। तो अल्लाह ताला दिखाता है, बहुत दफा ऐसे होता है कि अल्लाह ताला दिखाता है हमें इसी दुनिया में कि वो हमें छोड़ जाते हैं, वो हमसे बेवफाई करते हैं, या वो हमारे बनते नहीं है, या वो उनकी तरफ से हमें चोट पड़ती है, उनकी तरफ से हमें दुख पहुंचता है, वो ही हमें कुछ कह देते हैं तो फिर हम रोते हैं कि हाँ इन्होंने हमें छोड़ दिया, हमने तो सोचा था ये मेरा सहारा बनेगा, ये मेरे साथ ये करेगा, मैंने तो इतना किया इसके साथ अच्छा, मैंने सोचा था जब मेरा वक्त आएगा तो ये मेरे काम आएगा। अल्लाह ताला दुनिया में दिखाता है कि देखो सहारा सिर्फ अल्लाह का है। तुम यहाँ, जब हम यहाँ से ठुकराए जाते हैं ना किसी से, तभी हमें ये याद आता है, फिर हम रोते हैं अल्लाह के आगे, अल्लाह तू ही मेरा एक सहारा है, बाकी तो कोई भी नहीं। अब तुम्हें याद आया जब तुम हार्ट ब्रोकन हुए ना, तो जब हार्ट ब्रोकन, अल्लाह ताला बाज दफा इंसान को इसलिए उसका हार्ट ब्रेक करता है कि उसको समझ आ जाए और वो अल्लाह ताला की तरफ आ जाए कि असल मेरे लिए अल्लाह है, कोई सहारा पायदार नहीं है, कोई सहारा हमेशा का नहीं है, ये सहारे या तो इस दुनिया के अंदर भी छोड़ के चले जाते हैं, आखिरत में तो खैर किसी ने किसी का बनना ही नहीं है, वैसे ही दुनिया से चले जाते हैं, या फिर वो वैसे ही मुंह मोड़ लेते हैं, बेवफाई करते हैं। तो इसलिए कोई काफी नहीं, अल्लाह काफी है। और इस तनाजुर में, उनके तनाजुर में देखें तो वो तो ये डराते थे ना अपने बुतों से, आज भी लोग डराते हैं, हाय देखो अगर तुम ज्यादा दीन की तरफ आ गई ना फिर तुम्हें लोग एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे, फिर देखो लोग तो कोई तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए, देखो तुम नजरों में ना आ जाना, देखो तो कोई ऐसा ना हो जाए, इतना डराते हैं। वो फलाने तो FBI ना तुम्हारे पीछे पड़ जाए, देखो फिर इस तरह से ये बड़ा खतरा होता है, बड़े रिस्क में तुम अपने आप को डाल रहे हो, इस तरह की बातें करते हैं, डराते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है लहो भी काफी ना बताओ। खालिद बिन वलीद को डराया था ना लोगों ने कि उज्जा को ना, जब आपसे जरूर ने फतह मक्का हो गया, उज्जा को इनको तोड़ दो इनके बुतों को, तो जब वो गए तो उन्होंने कहा कि अब हमारे बुतों को अगर आपने ये इसको कुछ कर दिया ना, अब देखना आपकी खैर नहीं होगी। उनको इतना डराया उन्होंने, उतार के उसको तोड़ के फेंका। मोमिन डरता नहीं है। वही खविफूना का बिल्लदीना मिन दूनी, वो डराते हैं आपको उन हस्तियों से जो उसके सिवा है, कहते हैं ये आपका नुकसान कर देंगे, ये आपको कुछ कर देंगे, आप तो मत डरो। किसी वो तो बुत थे ना, किसी इंसान से भी डरने की जरूरत नहीं। ये ऐसे कर देगा, ये ऐसे कर देगा, तुम अपने दीन से हट जाओ, अगर तुम हिजाब ले लोगी ना जॉब से ही निकाल देंगे तुम्हें, फिर तो देखना तुम्हारे साथ कैसी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तुम अपना नाम ये रखोगी ना, उनको पता चल गया मुसलमान है ना, तो फिर वो तुम्हारे साथ ये करेंगे, नहीं अलैहिस्सलाम भी काफी नब्दा। तुमने अगर नमाज का पूछ लिया ना उनसे, तो देखना फिर तुम्हारी नौकरी बस गई। तरह तरह के डरावे देते हैं। असल में शैतान ना इंसान को इस तरह की बातें करवाता है, क्योंकि जब कोई इंसान नेकी का काम करने लगता है, वो डराता है ताकि वो बाज आ जाए इस नेकी के काम से, तो तब इंसान सोचे अलैहिस्सल्लाहु भी काफी नब्दा हो, और हमेशा अल्लाह पे भरोसा करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जाने लगा था, कितना टेरिफाइंग मोमेंट होगा, लेकिन उन्होंने कहा हसबी अल्लाह व निअल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी। वही बात है यहाँ पे, अलैहिस्सल्लाहु भी काफी नब्दा, अल्लाह का काफी नहीं है, तो हसबी अल्लाह हमेशा सोचे मेरे लिए अल्लाह काफी है बस। वमन युदलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, भटका दे, भटकने के लिए छोड़ दे, समझ लें ये उसको कोई सीधा नहीं कर सकता। अल्लाह हु अकबर, उसको कोई सीधा नहीं कर सकता वाकई, जिसको अल्लाह छोड़ दे। वमन यहदिल्लाहु फमा लहू मिन मुदिल, और जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहे तो उसको कोई भटकाने वाला नहीं। अलैहिस्सल्लाहु भी अजीज इंतकाम, क्या अल्लाह ताला गालिब इंतकाम लेने वाला नहीं है? क्या जिसको अल्लाह हिदायत दे देना, फिर उसको कोई गुमराह भी नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह ने हिदायत पे रखना। आप देख ले इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुफर और शिर्क के माहौल के अंदर पल बढ़ रहे, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला, अल्लाह ने हिदायत का फैसला कर लिया, कोई उनको गुमराह नहीं कर सकता। अकेले तने तनहा एक मुआहिद है ये उस माशरे में, कोई उनको बिगाड़ ना सका। तो वो सोचते थे कि हम भटकाए लोगों को, ये सोचते नहीं है कि अल्लाह ताला गालिब भी है, इंतकाम लेने वाला भी है। अल्लाह ताला अगर इनके इस बात की वजह से इनको पकड़ लेगा, तो इनका क्या होगा कि ये भटका रहे हैं लोगों को, ये लोगों को शिर्क की तरफ ला रहे हैं। वला इन सअलता हूँ, और अगर आप इनसे पूछें मन खलक समावाती वल अर्द लयकूलुन अल्लाह, अगर आप इनसे पूछें किसने पैदा किया आसमान और जमीन को, तो ये कहेंगे अल्लाह ने किया। मुशरिक भी ये कहते थे, इसलिए कि वो ये थोड़ी कह सकते थे, ये तो कोई उनको पागल ही कहेगा कि अगर वो कहे नहीं जी हमारे बुतों ने पैदा किया आसमान और जमीन को, तो मुशरिक भी कहते थे कि अल्लाह ने पैदा किया। कुल अफराई तुम मा तदउन मिन दुनिल्लाह, क्या तुमने कभी ये सोचा देखा से, मतलब ये क्या इसके ऊपर गौर फिक्र किया तुमने कि जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन, अगर अल्लाह इरादा कर ले मेरे साथ किसी भी नुकसान का, हल हुन्ना का आशिफा तो दुर्री, अगर अल्लाह नुकसान का इरादा कर ले तो ये जिनको तुम पुकारते हो क्या ये उस नुकसान को हटा सकेंगे मेरे से, औ अरादनी बिरहमतिन, या इरादा कर ले मेरे साथ रहमत का, हल हुन्ना मुमसिकातुर रहमती, तो वो क्या रोक सकेंगे उस रहमत को, ये जो तुम्हारे माबूद जिनको तुमने बनाया, ये एक सवाल। तुम कहते हो आसमान और जमीन को अल्लाह पैदा करने वाला, क्योंकि सबसे बड़ा वो ही है, आज भी किसी मुशरिक से भी पूछ ले वो यही कहेगा, हाँ वो ऊपर वाला एक है उसने बनाया। तो फिर क्या वो, अगर तुम इनके पास जाते हो नफा नुकसान के लिए, नुकसान हटाने के लिए, तो क्या अगर वो बड़ा इरादा कर ले नुकसान देने का, तो ये छोटे हटा सकेंगे, या वो बड़ा रहमत देने का इरादा कर ले तो ये रहमत को रोक सकेंगे। अब ये ना ऐसी बात है जो कहनी बहुत आसान है, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आती है ना, मैंने आपको बताया कि ये सूरत तौहीद के अंदर इंसान का इखलास बिल्कुल खालिस कर देती है। इस सूरत को बार बार पढ़ना चाहिए, ये जब ये यकीन दिल में बिठाने की जरूरत है कि अगर अल्लाह ने इरादा कर लिया मेरे साथ, नुकसान का कोई बचा नहीं सकता मुझे, और अगर उसने रहमत का इरादा कर दिया कोई उस रहमत को रोक नहीं सकता, मेरे अल्लाह ने फैसला कर दिया ना, मुझे भी परवाह नहीं, कोई रोक नहीं सकेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और ये याद आना चाहिए हमें, ये बात ना हमें याद आनी चाहिए, और ये हमारे दिल को इतना इत्मीनान और सुकून दे देती है कि फिर परवाह ही नहीं रहती, फिर फिक्रें खत्म हो जाती हैं। अल्लाह अकबर, कुल हस्बी अल्लाह, कह दीजिए काफी है मुझको अल्लाह। जैसे मैंने आपको कहा ना, अलैस अल्लाह भी काफी नबदा हो, क्या अल्लाह काफी नहीं है अपने बंदे के लिए? तो आप कह दे अल्लाह काफी है, अस अल्लाह काफी है, अले ही या तवक्कल मुतवक्किलून, उसी पे भरोसा करते हैं भरोसा करने वाले। और फिर अल्लाह ताला का वादा है ना सूरह तलाक में, अल्लाह ताला भी जो तवक्कल करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, फिर अल्लाह अकेला ही काफी है। और तवक्कल अल्लाह वकफा बिल्लाही वकीला, अल्लाह फिर काफी है उसके लिए वकील। कुल या कौमे मालू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल। अब ये एक उनको समझ ले एक वईद, एक धमकी दी जा रही है कि अगर तुम नहीं मानते ना तो ठीक है, तुम अपना काम करते जाओ, मैं अपना काम करता ही जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। आप सोच लें कि उस वक्त कितनी मुखालफत हो रही होगी, कितनी बातें हो रही होंगी, कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हटाने की कोशिश की जा रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, मैं अमल करता जाऊंगा, ये नहीं कि मैं बस अल्लाह पे भरोसा करके बैठ गया हूँ, हसबी अल्लाह व निमल वकील, बस इसकी मैं तस्बीह करता हूँ और मैंने करना कुछ नहीं, नहीं मैं अमल करूंगा। समझ आई बात? जब हम भरोसा करते हैं ना तो फिर हम सोचते हैं कि हम हाथ पैर तोड़ के बैठ जाएं, हम बस भरोसा कर रहे हैं अल्लाह पे, नहीं आपको अपना काम करना है। और फिर ये देखें इतनी मुखालफत के बावजूद आपसे सलम ने अपना काम छोड़ा नहीं। अपनी आपको जिंदगी को देखें, हम कितनी छोटी छोटी बातों पे काम छोड़ के बैठ जाते हैं, कितनी छोटी, जरा सी किसी ने मुखालफत कर दी, जरा सी किसी ने हमें बुरा भला कह दिया, जरा सा किसी ने हमें ताना दे दिया, हम फौरन उस नेकी को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि हमें पता है कि ये नेकी का काम है, हमने शुरू किया, लेकिन बस अब डिसहार्ट हो गए। डिसहार्ट इसलिए होगा कि जी उसने मुझे ये कह दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बातें सुनाई गई, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं अब अमल करता, बस मैं अल्लाह पे ही भरोसा करता हूँ। भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि आप अमल ना करें, आप अपना काम करते जाए, इन्नी आमिल। तो थोड़ी सी मुश्किल आने के ऊपर या थोड़ी सी मुखालफत होने पे या कोई बुरा भला कह दे या कोई आपको डरा दे, खौफ दिलाए, तो फौरन से आराम से बैठ ना जाया करें कि मैं सारा काम छोड़ के बैठ जाऊं। वो जो कर रहे हैं वो अपना करते रहे, यही तो अल्लाह पे भरोसा है ना, तुम करते रहो अपना काम, मैं अपना काम करता जाऊं। असल भरोसा ये है कि मुझे इस चीज की परवाह नहीं कि अब मैं ये हर वक्त इस चीज के अंदर लग रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं, मेरा क्या कर देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह मेरे नुकसान का इरादा ना करे। असहुबा तालमून, पसंद करीब तुम जान लो, मैयती आदाबु युखजी वयहिलु अलैहि आदाबु मुकीम, कौन है जो आता है उसके पास एक अजाब जो रुसवा कर दे उसको, और उतरता है उस पर अजाब कायम रहने वाला, यानी के इशारा है दुनिया के अजाब की तरफ, ये अनकरीब वो जान जाएंगे ना, ये कहा गया ना फसौफा तालमून। सौफा जो होता है ना थोड़ा सा उसके अंदर डिले होता है, सतालमून अगर होता सीन सिर्फ होता तो फिर जल्दी जल्द कर, ये भी अनकरीब का ही हम माना करते हैं, मगर थोड़ी देर का जल, यानी अनकरीब तुम जान लोगे कि कौन है जिसके ऊपर अजाब आता है रुसवा कर देने वाला और जिसके ऊपर उतरता है अजाब कायम रहने वाला। ठीक है, ये पीछे से आप उसको कनेक्ट करें ना तो फिर आपको पता चलेगा। क्या उनको मुशरिकीन मक्का को कहा जा रहा है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, फिर उनको पता चला, हाँ पता चला, क्योंकि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हिजरी के अंदर ही जंगे बदर हुई, जिसमें इनके बड़े बड़े काफिर मारे गए, 70 मारे गए और 70 जो है कैद हुए, तो दुनिया की भी रुसवाई जो मारे गए और आखरत में जो कायम रहने वाला अजाब है वो भी उनको मिला। तो इंसान इसका मतलब अल्लाह पे भरोसा करके चलता रहे और इन चीजों को अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दे कि मेरे दुश्मन क्या मेरे खिलाफ कर रहे हैं और वो क्या करेंगे, उन चीजों में ना पड़े, वो अल्लाह की सपुर्द है, अपना काम करें और फिर अल्लाह ताला खुद ही उनसे डील कर लेगा। इन्ना انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے نازل کی یہ کتاب لوگوں کے لیے، اس کا مطلب ساری انسانیت کے لیے ہے یہ کتاب، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بالحق، حق کے ساتھ، حق کا مطلب ہے سچائی کے ساتھ بھی، اور حق کا مطلب یہ ہے کہ با مقصد بھی. فمن اہتدی فلنفسہ، اب دیکھیں ایک فیصلہ بتا دیا گیا، جو ہدایت پائے اپنے لیے اچھا کرتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، بار بار ہدایت اور گمراہی کی بات آئی ہے نا اس سبق کے اندر، جو گمراہ ہوتا ہے بھٹکتا ہے اپنا برا کر رہا ہے، نہ نبی کا کوئی برا برائی اس کی وجہ سے، نہ ان سے کوئی پوچھ ہونی ہے کہ یہ انہوں نے کیوں نہیں مانا، نہ نبی کا کوئی نقصان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کسی اور انسان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ، نبی آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں بنا کے بھیجے گئے، کوئی حوالہ دار نہیں ہے کہ آپ سے ان کی پوچھو، اور آپ ان کے کوئی وکیل ہیں، آپ کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے کہ یہ کیوں نہیں انہوں نے مانا، یا آپ نے ان کو زبردستی کچھ کرانا ہے. اور یہ ہر دائی کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جو ہدایت پاتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، جو نہیں بھٹکتا ہے اپنے لیے بھٹکنے کا سامان کر رہا ہے. آپ ڈس ہارٹ ہو کے بیٹھ جائیں، میں نے اتنے لوگوں کو بتایا ابھی تک کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آتا، اب کیا فائدہ یہ کرنے کا، نہ ہی لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا. وما علینا الا البلاغ، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. آپ یہ جو آیت ہم نے پہلے پڑھی ہے نا، آیت نمبر 29، اس کے اندر آپ یہ لکھ لیں، جو وہ شعر ہے نا وہ مجھے یاد آ گیا، ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے بھی، اور ویسے تو جو مثال ہے شرک کی وہ تو ہے ہی، لیکن جو ہم شرک خفی کرتے اس کے لیے بھی اپنی یہ اس چیز کو یاد رکھیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے.
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل.